समय अनुसार साइंस मदद करती है। हमारे मृत्युंजय भाई आजकल चाइना गए हैं, बेंगलोर से होकर के आए और मुझे थोड़ा समाचार सुनाया कि वहां पर आजकल जैसे एयरपोर्ट बनती हैं, ऐसे वहां पर अपना जो योग भवन है वहां भी एक छोटी सी बिल्डिंग हम बना रहे हैं जिसमें के स्टील से स्ट्रक्चर बनता है, गर्डर होते हैं उससे पिलर सीमेंट की बजाय गर्डर। तो मुझे याद आया विदेश की यात्राओं के टाइम पर न्यूयॉर्क में मैंने देखा था बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बहुत जल्दी जल्दी यहां ऊपर जा रही थी, एक फ्लोर बनने में एक हफ्ता, ऐसा फास्ट। अब बाबा के सीजन में केवल 4 मास बाकी हैं, फिर से 4 मास के अंदर ये पुराना भंडारा सारा हम गिराएं और नया बनाएं। अगर हम जैसे हमारा नॉर्मल कारोबार चलता है उसको तो कम से कम 1 साल चाहिए, आवश्यकता है। जितना अभी है उससे 2-3 गुना ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल के अंदर कितने बाबा के बच्चे आएंगे पता नहीं। ब्रह्मा की 100 साल पूरी उम्र होने में कितने साल बाकी हैं, तो उस हिसाब से मृत्युंजय भाई से मैंने कहा जो ऐसे बनाने वाले हैं उनको बुलाओ या मीटिंग करें। 2 दिन के अंदर उनको बुला लिया या मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आपका ये स्थान जो है इसको गिरा के बनाने में हमको 1 मास में एक फ्लोर के लिए 1 मास चाहिए, दूसरे मास में दूसरा फ्लोर, तीसरे मास में तीसरा फ्लोर। और बाकी फिनिशिंग आदि करने में, मशीनरी, एयर कूलिंग ये सब करने में थोड़ा टाइम और चाहिए। तो हमने काउंट किया कि बाबा की पहली विजिट अक्टूबर में है, 19 अक्टूबर को, उसके पहले हमें कंप्लीट करना है। और आप सोचिए 20,000 स्क्वेयर फुट ग्राउंड फ्लोर है, 20,000 फुट फर्स्ट फ्लोर होगा, 20,000 फुट सेकंड फ्लोर होगा। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ दाल चावल सब्जी और उसके साथ में चाय वगैरह बनाने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पे माताओं की राजधानी, चपाती डिपार्टमेंट। और फिर सेकंड फ्लोर में स्टोर्स, उसी हिसाब से एयर कूलिंग वगैरह का उसकी छत के ऊपर बनाना है, क्योंकि गर्मी में रोटी बेलने वालों का, सब्जी काटने वालों का, भोजन बनाने वालों का, उनको फ्रेश एयर चाहिए। ये सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन किसके बच्चे हैं हम, बाबा ये हम लोगों को पक्का कराता था साकार बाबा। जब कभी सेवा के कारोबार में थोड़ी कोई डिफिकल्टी आती थी तो आप मुरलियों में पढ़ते हैं, बाबा कितना निश्चय से बोलता था बच्चे कोई नई बात नहीं है, ये विघ्न तो पहले भी आए थे, कलह पहले भी आए थे, भगवान का काम कोई रोक नहीं सकता, ये ईश्वरी कार्य है, होना ही है। इतना निश्चय बाबा का, और हमको भी आज वही निश्चय है। कि बाबा का कार्य अवश्य होना है। क्यों? उस समय तो बाबा के सामने कितने बच्चे थे मालूम है आपको? साकार बाबा के समय मैं जब ज्ञान में आया 1959 में तो 25 सेंटर थे, सिर्फ 25। बाबा के अव्यक्त होने तक 125 सेंटर थे 10 साल के अंदर, और आज कितने हैं? 130 देशों में 8,500 सेंटर है, सोचिए तो सही। उस समय 10,000 भाई बहन थे जब बाबा अव्यक्त हुए, सिर्फ 10,000, और आज 10,00,000 से ऊपर भाई बहने हमारे हैं। तो 10,00,000 भाई बहनों के लिए ये छोटी सी बात तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे दीज आर पीनट्स है? तो 10,00,000 भाई बहनों के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? 10,00,000 भाई बहनों को भंडारा बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा बताइए? 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। 7.5-8 करोड़ बिल्डिंग का खर्च होगा और बाकी मशीनरी का, बर्तन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये बर्तन छोटे हैं, क्योंकि लक्ष्य है 35,000-40,000 तक भाई बहन हो जाएं तो भी कोई दिक्कत ना आए। 40,000 के हिसाब से प्लानिंग किया है, एक टाइम पर अगर 40,000 भी हो जाएं तो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2-3 साल में मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बनाया 5,000 भाई बहनों के लिए, पिछले साल 50,00,000 लीटर पानी के लिए पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाए ताकि पानी की दिक्कत ना हो, और इस साल भंडारा बनाने का है। फिर इसके आगे क्या होगा वो तो बाबा जाने, लेकिन ये किससे बनता है सारा? तो बाबा के दिनों की बातें याद आती है। गुड़गांव से माताएं आती थी, क्या लेके आएंगी साथ में? चावल लेके आएंगी, कोई दाल लेके आएंगी, कोई थोड़ी सी चीनी लेके आएंगी, और बाबा इतना उसकी महिमा करते थे। बाबा कहते थे ये बच्चों के एक एक रुपए से सारा कार्य होता है। उन दिनों में तो आने और चवन्नी और अठन्नी वो भी चलती थी, आजकल तो वो बंद हो गया, लेकिन फिर हमारे जगदीश भाई ने, दादी प्रकाश मणि ने एक दूसरा रास्ता निकाला कि जब क्लास में आए तो क्या करें, भंडारी में 1 रुपया डालें, हाजिरी लगेगी, हाजिरी लगाने के लिए क्लास में आना पड़ेगा, 1-1 रुपए से ओम शांति भवन बना, आठ आने से 1-1 रुपए से ज्ञान सरोवर बना, 1-1 रुपए से ये जहां बैठे हैं आप इससे बना। तो 1-1 रुपए से क्या नहीं बनेगा, अरे किचन भी बन जाएगा और भी रहने के लिए स्थान बन जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा की खास बात कि बाबा ने जो आदमे साक्षात्कार किया विश्व परिवर्तन का, और उस साक्षात्कार के आधार से शिव बाबा को पहचाना। सतयुगी देवताओं को पहचाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रोल को पहचाना, स्वयं के अपने पार्ट को भी पहचाना। हमेशा बाबा एक बात हम बच्चों को बहुत बहुत पक्की करते रहे, बाबा ने क्या किया कभी सुना आपने? कितना खर्चा किया था स्थापना में कभी सुना आपने? इतना ही सुनते हैं कि अपना तन मन धन घर सब परिवार सारे का सारा समर्पित हो गया, और उनको देख करके अनेक परिवार और समर्पित हुए जिससे फाउंडेशन बना यज्ञ का। लेकिन बाबा ने कभी अपनी जीवन कहानी सुनाते थे, राजाओं महाराजाओं के साथ कारोबार थी, गुरुओं की कैसे सेवा की वो सारा बाबा सुनाते रहे। एक गुरु किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 12 गुरु किए। जब तक सतगुरु से बाबा मिला तब तक 12 गुरु किए। लेकिन कभी ये नहीं बोला मुख से कि क्या किया उनके। इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को ये बात पक्की कराई थी, जितना बड़ी दिल से सेवा करेंगे उतना बड़ा ताज मिलेगा, वो बात ठीक है, लेकिन दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता ना चले, उसकी वैल्यू है। मुख पे आया आधा गया उसका, और कहीं कोई कोई, देखो माफ करना, कोई कोई पहले बड़े उमंग में आकर के कुछ ना कुछ करते हैं, फिर किसी से रूठ गए थोड़ा सा, फिर क्या कहते हैं, मैंने जो दिया वो वापस करो, तो उसको बाबा क्या कहेगा, किस कैटेगरी में जाएंगे? तो बाबा ने इतनी साकार बाबा की बातें जो आज सुनाने की बात है उसमें कुछ राज हैं। सबसे पहला राज ये पहचानना किसका कार्य चल रहा है, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी देवता का नहीं है, किसी गुरु गोसाई का नहीं है, भगवान का कार्य। और भगवान का डायरेक्ट कार्य है, और डायरेक्ट कार्य में हम उनके राइट हैंड बनते हैं, इससे बढ़ करके और सौभाग्य किसी का क्या हो सकता है, आप बताइए। तो सबसे आज सबसे पहले तो अपने भाग्य के लिए अपनी पीठ को जरा ऐसे थपकाओ, वाह रे मैं वाह, अपने लिए ताली बजाओ। आप दादियों के लिए बजाते हैं, भाइयों के लिए बजाते, पर खुद के लिए भी तो बजाओ कि आपके जैसा सौभाग्य किसी का नहीं है। ऐसा नशा सदा अपने ऊपर अपने दिल में रखना है, बाबा आपने हमें इस कल्प में भी चुना, कल्प कल्प भी हमें चुनेंगे, इससे बढ़कर के और क्या प्राप्ति हो सकती है? सतयुग तो बाद में आएगा, जीवन मुक्ति तो बाद में आएगी, हम अभी जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। सारे संसार में क्या लगा पड़ा है, आग लगी हुई है जैसे, और बाबा के बच्चे कहां बैठे हैं? इतनी गर्मी है, चलो वैसे भी गर्मी है बाहर, और बाबा ने आपके लिए कि आप आराम से आके बैठे, एयर कूलिंग करवा दिया इतने बड़े हॉल को भी, تو سب سے پہلے بابا ہم بچوں کو ساکار بابا نشہ چڑھاتا تھا. بچے اپنے بھاگے کو پہچانو, سب سے پہلے وہ سنت مہاتمائیں رشی منی پنڈت, ان کو یہ دیویہ درشتی نہیں ملی جو آپ بچوں کو ملی ہے, جنہوں نے سویم کو پہچانا, بابا کو پہچانا, وشو پریورتن کے سمے کو پہچانا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پہچانا ہی نہیں, پہچاننے کے ساتھ ساتھ سویم جس کو کہا جاتا سب سے شریشٹھ سمے ہے پروشوتم سنگم یوگ کا, ایسے ٹائم پر پھر سے پروشوتم بننے کا بھاگیہ پراپت کر لیا. تو یہ پہلا نشہ ہمیں چاہیے. برہما بابا کو جو نشہ تھا میں سامنے رکھتا ہوں ان کو, کہ بابا کہتا تھا بچے فالو فادر اینڈ مدر. اب مدر کو فالو کرنے کی بات آتی ہے, مما کی بات آتی ہے. مما اپنے عمر کے حساب سے 18 سال کی ایج میں مما آئی تھی اور 46 سال تک کیا پارٹ بجایا مما نے, بڑا نیچرل پارٹ, بھلے کہنے میں آئے گا کماری تھی, پر مما کو جو ہم نے دیکھا نزدیک سے دیکھا, ان کی دنچریا کو دیکھا, ان کی وانی سنی, سرسوتی پریکٹیکل میں کیا تھی, ایشوری گیان کو مما نے کیسے اپنے جیون میں دھارن کیا, ان کا ایک ایک شبد, ان کے وائبریشن پرکمپن, ان کی درشتی, ان کا ویوہار, ماں کیا ہوتی ہے, وہ ماں کا پرتکش روپ جو امبا پوجی جاتی ہے, کس آدھار سے پوجی جاتی ہے, وہ پریکٹیکل دیکھ. کبھی اونچا آواز سے نہیں بولیں گی, چھوٹے اور بڑے ہر ایک کو جی کہہ کر کے بلائیں گے. ہم کہیں گے مما ہم چھوٹے ہیں, آپ ایسا کیوں کہتے ہیں, پر مما اپنے لیول سے بولتی, اور بابا نمت کس کا رتھ تھا, کس کا رتھ, سوچئے تو صحیح, ज्ञान के सागर का, सर्वशक्तिवान का, भाग्य विधाता का, उनके हाथ में वो करामात थी, जिस बच्चे पे हाथ रखे उसको डबल ताजधारी बना दे, बस चाहे वो कहां पर भी है, چاہے وہ پریوار میں ہے, چاہے وہ سمرپت ہے, بابا ہر ایک بچے کو اس نظر سے دیکھتے تھے, یہ کلب پہلے والے میرے وارث بچے. تو جیسا بابا نے ہم بچوں کو جس نظر سے دیکھا, بابا کہتے تھے بچے سویم کو پہچانو. کئی بار یہ بات آتی ہے گیان کے اندر, پہلے اپنی پہچان, پھر باپ کی پہچان, پھر ڈراما کی پہچان, پھر کرم اکرم وکرم کی پہچان, اور اس میں سب سے پہلی پہچان جو بابا نے دی کہ سویم کو پہچانو, آپ کس کے بچے ہو. وہ نشہ صدا رکھنا ہے, اس نشے میں رہیں گے تو مایا جیت بننا بڑی بات نہیں ہے. وہ سری لکشمی, وہ سری نارائن جو کمل फूल के ऊपर दिखाए जाते हैं वो आप स्वयं का स्वरूप देखेंगे उसमें। तो बाबा इस तरह से रोज नशा, मुरलियां आप सब पढ़ते हैं, जो थोड़ा अभी देरी से ज्ञान में आए उनको कभी कभी होता, मुझे अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी लगती है, हाँ? साकार मुरली थोड़ी सी, क्योंकि उसमें साकार बाबा ने वर्तमान युग की सच्चाई भी बताई हुई है और इस समय के अनुसार प्रैक्टिकल में कैसे चलना है। साकार बाबा जैसा अनुभवी रथ कोई नहीं, कोई नहीं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे अनुभव हैं बाबा के। बाबा कहते थे ना, बड़ी लाइट हो करके, ये तो गांवड़े का छोरा था, सुना, अनाज लेकर के गांव से शहर में बेचने का व्यापार का संस्कार था, और उसके बाद फिर हीरे जवाहरात की दुकान पर जाकर के वो आर्ट सीख लिया और हीरे जवाहरात का। बाबा के परिवार को देखो, दादी मिली होंगी आपसे, परदादी देखा है, दादी परदादी को, बुजुर्ग है अभी, 96 से ऊपर उम्र हो गई है, तो भी उनको देखो आप, वो अपना अनुभव सुनाती है। जब अच्छे से अच्छे बाबा गहने बनाता था ना, क्वीन विक्टोरिया के लिए बाबा ने कोई नेकलेस बनाया, पहले उनको पहना करके सबके सामने दिखाया। लेकिन जैसे ही बाबा ने साक्षात्कार किया, शिव बाबा का साक्षात्कार, सृष्टि चक्र का साक्षात्कार, परिवर्तन का साक्षात्कार, और उसके बाद बाबा की खास बात कि वो हीरे ज्वारात, ईश्वरी ज्ञान के हीरे ज्वारात के सामने तुच्छ। ईश्वरी ज्ञान की जो एक एक ज्ञान रतन की कीमत है लाखों रुपए, क्या हम लोगों को इतनी वैल्यू रहती है ज्ञान की, हाँ? जो मुरली रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, जरा हाथ खड़ा करो रोज, अरे वाह, फिर तो प्रैक्टिकल बाबा को फॉलो किया आपने। बाबा की विशेष बात, मुरली सुना के आएंगे और नई नई पॉइंट्स उसमें जो होंगी, फट से कागज पैड लेकर के, लाल पेंसिल लेकर के, दादी प्रकाशमणि को, दीदी मनमोहिनी को, जगदीश भाई को, बॉम्बे में पुष्प शांता दादी को, ब्रिजेंद्रा दादी को, बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी को, कानपुर में गंगे दादी को, अमृतसर में चंद्रमणि दादी को, मनोहर दादी को, फटाफट चिट्ठी में लिखेंगे, देखो आज बाबा ने क्या ज्ञान रतन दिए हैं, और वो उसमें से सार रूप में एक एक को। आप सारे दिन में कितने लेटर लिख सकते हैं हाथ से, हाँ? मुश्किल से एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, और बाबा 20-25 पत्र लिख करके पोस्ट करता था, और हम सभी इंतजार करते थे बाबा की पोस्ट आए नए नए ज्ञान रत्न में। तो बाबा कहते थे जौरी जो होते हैं उनको रत्नों की पहचान होती है, उनको पहचान के कारण उसकी वैल्यू रहती है। तो बच्चे आपको भी फॉलो फादर करना है, सुना, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, तो सबसे बड़ा गृहस्थ व्यवहार वाला कौन था, सारे सृष्टि का बाप ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से शिव बाबा से प्राप्त ज्ञान रत्नों को पहचाना और उसको धारण किया और उससे देखा कि इससे क्या जीवन बनती है, नर से श्री नारायण बन जाते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं, ऐसे ज्ञान की रत्नों की वैल्यू जैसे बाबा को थी वैसे हम बच्चों को होनी चाहिए। मैं खास बात ये इसलिए कह रहा हूं कि मुरली भी सुनते हैं, एक क्या कहते हैं जैसे रस्म होती है ऐसे भी सुनते हैं, पर मुरली को अच्छी तरह से अध्ययन करना जरूरी। तो प्रैक्टिकल देखते थे, मम्मा को उस मुरली की बहुत वैल्यू थी, दादी जी को इस मुरली की बहुत वैल्यू, हमारी जानकी दादी को उस मुरली की बहुत वैल्यू। मम्मा पहले सुनती थी पास में बैठ करके, यशु दादी नोट करती थी, फिर वो लिखी जाती थी, फिर मम्मा वो लिखत को देखेंगी एक्यूरेट लिखी है, फिर छपेगी, फिर छपी हुई मुरली पढ़ेंगी, और फिर टेप जब शुरू हुई तो टेप पर भी सुनेंगी। कितनी बार हो गई? 4 बार। अगर आप 4 बार मुरली का अध्ययन करेंगे तो आपके पास फालतू बातें सोचने का टाइम रहेगा? हियर नो ईवल अपने आप हो जाएगा, सी नो ईवल अपने आप हो जाएगा, मुरली के सिवा और कोई बात करने का मन ही नहीं होगा आपका। कितना टाइम बच जाएगा, सफल होगा सारा सब। तो बाबा ने आज से लेकर के कहां भी हम रहते थे, सर्विस के कारण जहाज में कभी कहीं कभी कहीं, तो मुझे चिंता हुई शुरू में, बाबा मैं क्या करूंगा जब मेरा जहाज दूसरी जगह जाएगा। तो बाबा ने क्या लिखा, बच्चे कहीं पर भी होंगे, याद में तो बैठ सकते हो सवेरे, मुरली तुम्हें मिलती रहेगी, मुरली पढ़ना, सारा दिन अपना चार्ट रखना, सोने से पहले बाबा को याद करना, और हफ्ते हफ्ते अपना चार्ट बाबा को भेजना। बाबा को हम बच्चों का कितना फिक्र था, साकार बाबा को, एक एक बच्चे को, जो उस समय के बाबा के बच्चे हैं, कोई से भी आप अनुभव सुनेंगे तो आपको लगेगा कि साकार बाबा ने हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस तरह से व्यक्तिगत पालना की, लौकिक मां बाप भी ऐसी पालना नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं बॉम्बे में हॉस्पिटल में था, मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था, और बाबा उस समय बॉम्बे आए थे, 1963 की बात है, और बाबा से जब से मैं मिला था बाबा से 1959 में, तो बाबा से इतना प्यार कि बाबा के मुरली के सिवा और बाबा के याद के सिवा और कुछ सूझता नहीं था, और बाबा जो कहता था सर्विस के लिए तो सर्विस के लिए बुद्धि पूरी उसमें रहती। बाबा बॉम्बे आए, मैं मिल ना सकूं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो मैंने फोन उठा करके बाबा को, शील दादी से फोन नंबर लिया और बाबा से डायरेक्ट फोन पर बात की। मैंने कहा बाबा आप बॉम्बे में आए हैं, मैं आपसे मिल नहीं सकता, मेरी ये ऑपरेशन के कारण मुझे छुट्टी नहीं है हॉस्पिटल से, क्या आप नहीं आ सकते मेरे पास? अधिकार से बाबा को कहा, بابا نے کہا اچھا بچے رمیش سے پوچھیں گے. رمیش بھائی سے بابا نے بات کی اور شام کو 6 بجے بابا رمیش بھائی کے ساتھ ان کی کار میں ہاسپٹل میں ملنے کے لیے. پندرہ منٹ بابا ادھر میرے پاس رہے, گلے لگایا, ٹولی کھلائی, امنگ اتساہ کے بہت سندر سندر شبد بولے. اور بابا نے کہا بچے یہ تو ٹیمپریری ہے, تھوڑے دن میں تو بابا کے پاس آ ہی جانا ہے آپ. اور اس کے 1 مہینے کے اندر میں نیوی سے ہی چھٹی لے لی اور بابا کا پورا بابا کے پاس رہا 3-4 ماس, اور اس کے بعد سیوا میں ویست ہو گئے. ان دنوں میں بابا خاص کوئی نہ کوئی سنت مہاتموں کے جو لیکچر ہوتے تھے, بابا کہتے تھے جاؤ سنو, سن کر کے بابا کو آ کے سناؤ. کیا کہتے ہیں سوامی چنمیانند کے ان دنوں میں بہت لیکچر بامبے میں ہوتے تھے. سنا ہے نام سوامی چنمیانند کا, بہت مشہور نام. پھر بابا اس کے اوپر کوشچنز نکال کے دیتے, ان سے جا کے پوچھو. کوشچنز پوچھتے تھے ان کے جا کے آشرم میں, بابا کے پرشن نکالے ہوئے ان کا اتر اپنے ڈنگ سے وہ دیتے تھے, لیکن جو ایکوریٹ بات. اس سے پتا لگتا تھا ہمیں جو گیان مل رہا ہے اس گیان کے سامنے دنیا میں کوئی گیان نہیں ہے, اس کے جیسا گیان کوئی نہیں. جو بابا کہتا ہے کہ ایک ایک رتن کی ویلیو لاکھوں روپے, پریکٹیکل انوبھو ہوتی ہے. سارے شاستروں کا سار بابا نے سنا دیا. جو برہما کے ہاتھ میں شاستر دکھاتے ہیں نا بھکتی مارگ میں, جو برہما کا چتر ہے تو اس میں چاروں وید اور سب شاستر ان کے ہاتھ میں دکھاتے ہیں. اس کا کارن کیا, یہ نہیں کہ برہما جی نے وہ رچے ہیں, لیکن سبھی کا سار شیو بابا نے ان کے دوارا ہم بچوں کو دیا. اس حساب سے بابا کہتے تھے بچے اس گیان کی بہت ویلیو آپ بچوں کے دل میں چاہیے, کبھی سنکلپ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اس گیان کو چھوڑ دوں. کیوں؟ اس سے کیا بنتے ہیں؟ ڈبل تاجداری بنتے. سنسار کے اندر کوئی ایسا مارگ نہیں ہے, کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہے جو 21 جنم کے لیے آپ کو ڈبل تاجداری بنا. ایک جنم کی پڑھائی پڑھتے ہیں, شریر چھوڑتے ہیں, پھر سے دوبارہ پڑھنی پڑتی. اس لیے بابا کہتے تھے بچے یہ ایشوری پڑھائی کی اتنی آپ کے دل میں ویلیو ہونی چاہیے, اس کی قیمت ہونی چاہیے, جو آپ کو کبھی بھی سنکلپ نہ آئے. کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں نا ہم, آتے ہیں بھائی بزرگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے تو سوچتے ہیں بابا ابھی جلدی واپس لے چلو. نہیں, چاہے لیٹے رہو ہاسپٹل میں رہو, لیکن اپنی سچی کمائی کرتے رہو, مرلی سنتے رہو, یاد میں رہو, جو کوئی آئے تو اس کو درشٹی دے کے تھوڑا 2 شبد پریچے دیتے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہیں بابا کے سامنے. ایک بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اس کی سیوا کر کے بابا کے سامنے 1 مہینے کے بعد اس کو لے کے آئے. بابا نے بڑے پیار سے گلے لگا کے ٹولی کھلا کے اس کو کہا بچے تمہیں کچھ نہیں ہے, سنا کچھ نہیں ہے, وردان دے دیا. وہ 100 سال عمر جیا, 60 سال کی عمر میں بابا سے ملا تھا, 40 سال اس کے بعد جیا. بڑی سیوا کی اس نے, بامبے کی بات ہے. اور مجھے گلے لگا کر کے کہا مریض کی سیوا کر رہے ہو کرتے رہو گے ہاسپٹل بناتے رہو گے. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج اپنی ہاسپٹل ہے, یہاں پر 120 بیڈ کی ہاسپٹل اوپر ہے, 80 بیڈ کی نیچے ہے, بامبے میں ہے, بروڈا میں ہے. اتنی بھاونا سے ہمارے ڈاکٹرز نرسز سبھی سیوا کرتے ہیں. وہاں آنے والے بھائی بہنیں اتنا پیار سے کہتے ہیں ایسی ہاسپٹل اور کوئی نہیں. سنا, لیکن ہر ایک ستھان, بامبے کی ہاسپٹل اپنے پاؤں پر, ماؤنٹ آبو کی اور آبو روڈ کی کس ایریا میں ہے, آدیواسی ایریا میں, بیچارے اپنی دوائی کا خرچ بھی نہیں کر سکتے, ان کو جا کر کے لانا پڑتا ہے, اپنی ایمبولنس بھیجنی پڑتی ہے. تو کئی پوچھتے ہیں آپ کے ہاسپٹل, دنیا کی ہاسپٹل تو اتنا چارج کرتے ہیں, یہاں تو ایسا چارج بھی نہیں ہے اور آپ تو فری بھی سیوا کر رہے ہو. کیونکہ جب ہمیں اسٹیٹسٹکس ملتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کیول 20% پیشنٹ ہیں جو پے کرتے ہیں, اور 20% ہیں جو سبسیڈائزڈ, آدھا آدھا, اور باقی کتنے رہ گئے, 60%. 60% میں سے 15-20% ہمارے سرنڈرڈ بھائی بہنیں ہوتے, ان کے لیے بالکل فری رکھا ہوا ہے, اور باقی 40% آدیواسی ہیں, غریب ہیں, سب ہیں, ان کا بھی فری. کیسے چلے گا ہاسپٹل, کیسے چلے گا؟ تو میرے سے پوچھتے ہیں کیسے چلے گا, ہم نے کہا بابا کے بچے بہت ہیں. ہم نے بی کے ہیلتھ کیئر فنڈ ایک رکھا ہوا ہے, سمجھتے ہیں بی کے ہیلتھ کیئر فنڈ. بی کے ہیلتھ کیئر فنڈ میں کوئی کہاں سے, کوئی کہاں سے, کوئی کہاں سے بھیجتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے ہیں. لیکن ایشوری پریوار اتنا بڑا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے چلتا ہے. اور جب کبھی پرابلم کوئی ہوئی تو کیا کریں گے, جانکی دادی کو سنا دیتے ہیں. جانکی فاؤنڈیشن خاص انہوں نے لندن میں بنایا ہاسپٹل کو سہیوگ دینے کے لیے, ہر مہینے وہاں سے بھیجتے ہیں, اور بھی بھائی بہنیں بھیجتے ہیں. تو آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, گیان کے دوارا کیا پراپتی, بھوش کے اونچ پد کی پراپتی, اور ساتھ میں کرم کا حساب ہے نا. ہیلتھ کے لیے دھیان دیں گے, ابھی دیں گے تو 21 جنم کے لیے ایور ہیلدی بنیں گے, یہ بھی دھیان رکھنا. جتنا بڑی دل سے سیوا کرتے ہیں اتنا خوشی بڑھتی ہے, دعائیں ملتی ہیں. میں تو پریکٹیکل دیکھتا ہوں, غریبوں کی سیوا کی جاتی ہے یا اپنے بھائی بہنوں کی بھی سیوا. ہمارے ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی ویل ٹو ڈو ہیں, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے برہمن پریوار میں بھی غریب ہیں, بڑے بڑے آپریشن کرانے پڑتے ہیں. کسی کا کینسر کا آپریشن ہوتا ہے, کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے, کسی کا کڈنی کا ہوتا ہے, کرانے پڑتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہو از دی ریچیسٹ ان دا ورلڈ, بابا کے شبد یاد ہیں, ब्रह्मा कुमारीज एंड ब्रह्मा कुमार आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई चिंता नहीं, मिलजुल करके हर कार्य को सफल करेंगे। अभी आप सोचेंगे, किसी को नशे से कह सकते हो, इस समय हमारा नया भंडारा बन रहा है, इस समय हमारा सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, इस समय यहां पर स्टूडियो बन रहा है। आप सोचेंगे स्टूडियो बना के हम क्या करेंगे, यहां पर कोई नाच तमाशा तो करना नहीं है, स्टूडियो क्यों बनाना है। लेकिन नहीं, कितना समय बाकी है, थोड़े समय के अंदर सारे विश्व को बाबा का संदेश देने के लिए आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। उस दिन सुनाई भी थी करुणा भाई ने, जो एक चैनल का किया है। अब चैनल ले लो तो चैनल तो है, जैसे क्या कहते हैं, हाथी बांध लो, उसको घास भी तो खिलाना पड़ेगा, लेकिन घास भी ऐसा चाहिए जो हाथी का पेट ठीक से भर भी सके। सारे विश्व की आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचे, ताकि कोई कह ना सके भगवान आप सृष्टि पर आए, हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं हो, हरेक तक ये बाबा का संदेश पहुंच सके, उसका आज हमारे सामने ये सबसे अच्छा साधन है, टेलीविजन के द्वारा सबको संदेश दे। तो नशे से आपको दिल में आना चाहिए, अरे वाह हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैं तो इसी ख्यालों में रहता हूं कि हम बच्चों को बाबा ने कहां से चुना, हम एक गांव में जन्म लिया, कहां से कहां बॉम्बे में पहुंच गए और वहां पर ज्ञान मिल गया, बाबा ने अपना बना लिया और फिर सेवा में ऐसा चांस दिया 52 साल से। क्योंकि शुरू शुरू में बाबा को मैं पत्र लिखता था, बाबा मेरी ये हॉबी है, फोटोग्राफी मेरी हॉबी है और कई, तो बाबा ने मेरे को जवाब दिया, बच्चे आपकी एक ही हॉबी होनी चाहिए, सर्विस, सर्विस एंड सर्विस। और मैं कहूंगा क्या कहूंगा, मुझे बाबा को फॉलो करना है, आपको भी तो बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा ने हर समय अपना टाइम, अपना विचार, अपने कर्म सब बच्चों के सेवा में लगाए। बाबा सारे विश्व को अपने बच्चे ही मानता था ना, तो सारे विश्व की सेवा माना बच्चों की सेवा में लगाए, तो हम भाई बहनों का फर्ज क्या है, क्या करना है, फॉलो फादर एंड मदर। जैसे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, दादाओं ने, सबने अपना तन मन धन समय संकल्प सब सेवा में लगा के इतना सारे विश्व की सेवा की, अगर आज हम सब भाई बहने इतना मिलकर के उसी दृढ़ संकल्प से करें, तो बाबा का संदेश कल नहीं आज सारे विश्व तक पहुंच सकता है। तो ऐसा इस भट्ठी में आने का सिर्फ योग किया, योग करने से अवश्य बाबा तो कहता है योग करना, योगी जीवन चाहिए, ये खास भट्ठी होती है, ऐसा अनुभव करके जाएं जो आपका जीवन एक नेचुरल बन जाए। और इसी तरह से विश्व की सेवा भी हमारी दिल में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। और एक बात खास, लास्ट की बात है, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, लास्ट की एक ही बात, अपने समय की हमको वैल्यू होनी चाहिए। ڈر کے مارے نہیں کہ وناش سامنے کھڑا ہے اس کے لیے، نہیں، بابا کہتے آپ اس سنسار کے اندر سب سے شریشٹھ آتمائیں ہو، سب سے شریشٹھ آتماؤں کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اس کو ویرتھ باتوں میں، ویرتھ سوچنے میں کبھی نہ گنوانا، اور اس کے ساتھ میں اگر آپ یوگی جیون میں چلیں گے، بابا کے یاد کے نشے میں رہیں گے، گیان کے رتنوں کے نشے میں رہیں گے، تو جیسا کرم میں کروں گا مجھے دیکھ کر اور کریں گے، آٹومیٹک سروس ہوگی اور آپ بابا کے سروسیبل رتن بن جائیں گے۔ اوم شانتی۔